హల్లెలూయా. యేసు మసీహకే ఇదరా జోర్దార్ తాళియాం. ఆజ్ హమ్ ఖుదావంద్ కే కలామ్ మే సే దేఖేంగే, నయే అహద్నామా మే సే మత్తీ రసూల్ కీ మార్ఫత్ లిఖీ గయీ ఖుదావంద్ యేసు మసీహ్ కీ అంజీల్, ఉస్కా 10 బాబ్ ఉస్కీ 5వీ ఆయత్ సే 15వీ ఆయత్ తక్. యహాన్ పర్ ఖుదావంద్ యేసు మసీహ్ కా హుక్మ్ జానేంగే కే ఉస్నే 12 రసూలో కో జో మిషన్ దియా, ఉస్కే మిషన్ మే సే హమ్ సీఖేంగే కే ఆజ్ హమారే లియే ఉస్కా క్యా మిషన్ హై. క్యూంకి హమ్ సబ్ ఇస్ జమీన్ పర్ క్యా హై జీ, మిషనరీ. మేరే సాథ్ కహే, హమ్ మిషనరీ హై. హమ్ మిషనరీ హై. ఇస్సే మురాద్ యానీ కే జిస్కో హుక్మ్ దియా గయా హో, మిషన్ దియా గయా హో, మక్సద్ దియా గయా హో కే వో అప్నే భేజనే వాలే కే మన్సూబే కో పూరా కరే. క్యూంకి హమారా ఖుదా మిషనరీ ఖుదా హై. ఖుదా మిషనరీ ఖుదా క్యూ హై? క్యూంకి ఉస్కా మిషన్ హై దునియా కో బచానా, ఉస్కా మిషన్ హై దునియా కో జగానా, ఉస్కా మిషన్ హై కే దునియా కే లియే అప్నే బేటే యేసు మసీహ్ కో భేజే కే ఉస్కా మిషన్ పూరా కరే. ఔర్ యే మిషన్ కా ఖులాసా జబ్ హమ్ దేఖతే హై, ఖుదావంద్ నే ఇబ్తిదాహీ మే ఇస్సే పేష్తర్ ఆస్మాన్ జమీన్ ఔర్ ఉస్కే ఊపర్ ఔర్ ఉస్కే నీచే ఔర్ పానీ కే అందర్ కోయి భీ చీజ్ వజూద్ మే ఆయే, ఖుదా దేఖ లేతా హై కే జో కుచ్ మే బనాఊంగా ఉస్కా అంజామ్ వో క్యా క్యా కరేంగే క్యా క్యా హోగా. సో ఖుదా ఏక్ మిషన్ బనాతా హై కే జబ్ మే ఇన్సాన్ కో బనాఊంగా ఉస్కే లియే ఏక్ మిషన్ హోగా కే వో ఇస్ జమీన్ పర్ క్యా కరే ఉసే పూరా కరే. ఔర్ ఇన్సాన్ నాకామ్ హోగా, ఉస్ నాకామీ కే బాయస్ ఉస్ ఇన్సాన్ కో ఫిర్ మే అప్నీ కువ్వత్ దూంగా, అప్నా కలామ్ దూంగా, ఉస్సే నక్షా దూంగా ఔర్ ఉసే బతాఊంగా కే ఇస్ మిషన్ కో క్యా కర్నా హై జీ, కిస్ తరహ పూరా కర్నా హై. సో 12 రసూలో కీ జో హమ్ ట్రైనింగ్ దేఖతే హై ఉస్మే హమే జో సీఖనే కో ఆజ్ మిలేగా కే హమ్ భీ జో సీఖ రహే హై దిన్ బ దిన్. ఆప్ బహుత్ బాబర్కత్ లోగ్ హై కే హఫ్తే కే 7 దిన్ ఆప్ కో కలామ్ కీ రోటీ దస్తయాబ్ హై. యే బహుత్ బడి బర్కత్ హై. మేనే బహుత్ సే గిర్జా ఘరో మే జాకర్ దేఖా హై, సునా హై, పాస్బానో సే బాత్ కీ హై, ఉన్కే కలీసియాఓ కే లియే జో రోటీ హమ్ సబ్ కే లియే దస్తయాబ్ హై ఉన్కో హఫ్తే మే గాల్బన్ ఏక్ దఫా మిల్తీ హై. ఇస్లియే ఇస్ రోటీ కో జబ్ హమ్ ఖాయే తో సేర్ హో, బర్కత్ పాయే తాకే తందరుస్త హోకర్ ఉస్ మిషన్ కో ఉస్ మక్సద్ కో జో ఆస్మానీ హై పూరా కర్ సకే. సో ఆయే 12 రసూలో కా మిషన్ దేకే ఔర్ ఉన్కా మిషన్ కైసే హమారా మిషన్ బన్తా హై, ఉన్కో జో హుక్మ్ దియా హమారే లియే ఆజ్ క్యా హుక్మ్ హై ఔర్ హమారా హుక్మ్ యే హై కే ఉస్కీ క్యా కీ జాయే జీ, పాస్దారీ కీ జాయే, తాబేదారీ కీ జాయే. సో మత్తీ కీ ఇంజీల్ ఉస్కా 10 బాబ్ ఉస్కీ 5వీ ఆయత్ సే 15వీ ఆయత్ తక్ పఢూంగా. యహాన్ పర్ లిఖా హై ఇన్ 12 కో యస్సు నే భేజా ఔర్ ఉన్కో హుక్మ్ దేకర్ కహా, గైర్ కౌమో కీ తరఫ్ నా జానా ఔర్ సామరియో కే కిసీ షహర్ మే దాఖల్ నా హోనా, బల్కే ఇస్రాయిల్ కే ఘరానే కీ కోయి హుయి భేడో కే పాస్ జానా ఔర్ చల్తే చల్తే యే మనాదీ కర్నా కే ఆస్మాన్ కీ బాద్షాహీ నజ్దీక్ ఆ గయీ, బీమారో కో అచ్చా కర్నా, ముర్దో కో జలానా, కోడియో కో పాక్ సాఫ్ కర్నా, బుద్రుహో కో నికాల్నా, తుమ్నే ముఫ్త్ పాయా ముఫ్త్ దేనా, నా సోనా అప్నీ కమర్ సే కమర్ బాంధ్ నా సోనా అప్నీ కమర్ మే కమర్ బాంధ్ మే రఖనా, నా చాందీ నా పైసే రాస్తే కే లియే కోయి రాస్తే కే లియే నా ఝోలీ లేనా, నా దో దో కుర్తే నా జూతియాం నా లాఠీ, క్యూకే మజ్దూర్ అప్నీ ఖురాక్ కా హక్దార్ హై ఔర్ జిస్ షహర్ యా గావ్ మే దాఖిల్ హో దర్యాఫ్త్ కర్నా కే ఉస్మే కౌన్ లాయిక్ హై ఔర్ జబ్ తక్ వహాన్ సే రవానా నా హో ఉసీ కే హాన్ రహనా ఔర్ ఘర్ మే దాఖిల్ హోతే వక్త్ ఉసే దువాయ్ ఖైర్ देना और अगर वो घर लायक हो तो तुम्हारा सलाम उस पर उसे पहुंचे और अगर लायक ना हो तो तुम्हारा सलाम तुम पर फिर आए। और अगर कोई तुमको कबूल ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने तो उस घर या उस शहर के बाहर निकलते वक्त अपने पांव की गर्द झाड़ देना। मैं तुमसे सच कहता हूं कि अदालत के दिन उस शहर की निस्बत सदूम और अमूरा के इलाके का हाल ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। और यहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने क्या किया है, उनको मिशन दिया है। उनका मिशन क्या है? पहली बात, खुदावन यीशु मसीह ने 12 को हुक्म दिया है कि तुम गैर कौमों के पास ना जाना, सामरियों के किसी इलाके में ना जाना। हुक्म क्या दिया गया? तुम्हें इसराइल की खोई हुई भेड़ों के पास जाने के लिए क्या है जी? हुक्म है जाना और जाकर उनको क्या कहना, खुदा की बादशाही नजदीक आ गई। 12 को खुदा ने मना कर दिया गैर कौमों के पास नहीं जाना, लेकिन उनको कहा कि इसराइल के घराने के पास जाना जो खोए हुए हैं, जो खुदा के कलाम से फिर गए हैं, जो गुमराही में हैं, उनके पास जाना ठीक उस चरवाहे की तरह। एक चरवाहे की 100 भेड़े थी, उन 99 में से एक खो जाती है और उसके पीछे जाता है और जब तक उसे मिल ना जाए वो उसे ढूंढता रहता है और जब मिल जाए तो बड़ी खुशी करना। तो खुदावन यीशु मसीह ये उन लोगों की बात कर रहा है जो उन 100 में से एक भेड़ की तरफ इशारा है कि उनके पास जाना। तो ये हुक्म हो गया शागिर्दों के लिए। हम अपनी जिंदगी में आज देखेंगे कि क्या हमें किसके पास जाने की जरूरत है, किसके पास नहीं जाना, किसको खुदा की बादशाही की तालीम देनी है, किसको नहीं। क्योंकि इब्तदाई तौर पर खुदा ने अपने बेटे यीशु को भेजा कि जाकर इसराइल के 12 कबीलों में क्या करना, मनादी करना, उनको बताना कि जिसके इंतजार में तुम थे, जिसके लिए मुद्दतों से तुम हैकले सुलेमानी में, खैमा तजमा में और गुलामी में और आजादी में, खुशहाली में, तारीकी में, बदी में, हर तरह के दुखों में, जिस पर तवक्कल करके इंतजार करते रहे, वो आ गया है, वो तुम्हारे दरमियान है। तो ये तो हुक्म उनके लिए हो गया। हम इससे सीखेंगे कि हमारे लिए हुक्म क्या है। उनको खास खास कहा कि इसराइल के पास जाना है, लेकिन हमारे लिए आज हुक्म क्या है? मत्ती 28 बाद जब हम उसकी 19वीं आयत से पढ़ते हैं तो वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा कि वो वक्त आ पहुंचा है कि आप सिर्फ इसराइल के घराने नहीं बल्कि क्या लिखा है, जाओ जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप बेटे और रूह कुदस के नाम से क्या दो जी, बपतिस्मा दो। मुख्तसर लोगों से खुदा ने जवाब क्या दे दिया, पैगाम क्या दे दिया, मिशन क्या बना दिया। अब हमारा मिशन मुख्तसर नहीं बल्कि क्या है जी, लामहदूद है। अब सिर्फ एक 12 कबीलों की कौम नहीं बल्कि पूरी दुनिया में 170 कौमें पाई जाती हैं, मुल्क पाए जाते हैं, 195 से ज्यादा 96 मुल्क पाए जाते हैं, उनमें जाने की क्या है जी, जरूरत है। तो उनको कहा कि चलते चलते ये मनादी करना, आसमान की बादशाही नजदीक आ गई, बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जिंदा करना, बदरू गिरफ्ता को आजाद करना और जो कोड़ी हैं उनके कोड़ को पाक साफ करना और क्या करना, तुम्हें मुफ्त मिला है, मुफ्त ही देना। इस आयत को मैंने अपनी जिंदगी में, अपनी पूरी खिदमत में अपनाया है कि बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम है, वो मुफ्त हमारे लिए खुदा का तोहफा है। हालांकि उसको लिखने के लिए बथेरों ने अपना खून बहाया, बथेरों ने अपना रुपया पैसा लगाया, बथेरों ने वक्त लगाया, बहुत कुछ किया ताकि वो खुदा का कलाम आज हमारे सामने इस लिखी हुई बुक जिसे किताबे मुकद्दस कहते हैं, कापी की सूरत में हमारे पास, किताब की सूरत में हो। जो पैगाम यीशु मसीह ने उनको दिया उसने कहा कि तुम्हारे लिए ये पैगाम मुफ्त है लेकिन मुझे उसकी कीमत अदा करनी पड़ी। इसलिए उनका पैगाम क्या था कि जाओ जाकर खुदा की बादशाही की क्या करो, मनाती करो। तो हमारे लिए हुक्म है कि हम सब कौमों के पास जाएं, सब कौमों के पास जाएं, खुदा की बादशाही की मनादी करें। और उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहली बात हमें ट्रेनिंग जरूरी है, जो आपकी हफ्ते के 7 दिन ट्रेनिंग होती है। सुबह का पैगाम सिर्फ ये नहीं कि हम एक रस्मी तौर पर इसे करते हैं, सुबह का पैगाम इस हद तक नहीं कि सुबह की इबादत ऐसे है कि जी ठीक है, खुदा की हुजूरी में हाजिरी लगाई और बात खत्म। सुबह की इबादत का मेन मकसद क्या है कि हम जैसे घर जाकर जिस्मानी खुराक खाएंगे, उससे पहले रूहानी खुराक खाएं, ताकि हम अपने अपने मिशन को क्या कर सके जी, पूरा कर सके। तो शिगिर्दों का मिशन बताया गया है कि क्या करना, इसराइल के पास जाना। हमारा मिशन क्या है, सब कौमों को क्या बनाना है जी, शगिर्द बनाना है। मेरे साथ जरा देखे पालूस रसूल हमको क्या सिखाता है, इमाल की किताब उसका 26वां बाब जब देखते हैं, वो अगरपा बादशाह के सामने उसकी अदालत में है और उस पर क्या की क्या किया जा रहा है, उस पर अल्जाम है कि ये उस यस्सु का नाम लेकर मनादी करता है, उसके कलाम को लोगों तक पहुंचाता है और लोग जिंदगियां बदल रहे हैं, तौबा कर रहे हैं, वो गुनाह से, तारीकी से, मौत से निकलकर जिंदगी की तरफ आ रहे हैं। तो पालूस अग्रिप्पा बादशाह के सामने क्या करता है, अपनी सफाई पेश करता है। और वो क्या कहता है, जब हम पहली आयत को पढ़ते हैं, अग्रिप्पा ने पालूस से कहा तुझे अपने लिए बोलने की इजाजत है, पालूस हाथ बढ़ाकर अपने जवाब को यूं पेश करने लगा कि ऐ अग्रिप्पा बादशाह, जितनी बातें यहूदियों ने मुझ पर नालिश कर ऐ अग्रिप्पा बादशाह जितनी बातों की यहूदी मुझ पर नालिश करते हैं, आज तेरे सामने उनकी जवाबदही करना। अपनी खुश नसीबी जानता हूं, खासकर इसलिए कि तू यहूदियों की सब रस्मों और मसलों से वाकिफ है, बस मैं मिन्नत करता हूं कि तहम्बल करके मेरी सुन ले, मेरी तरफ तवज्जो कर। तो वो अग्रिप्पा क्या करता है, ठीक है बोलो। चौथी आयत में कहता है सब यहूदी जानते हैं कि अपनी कौम के दरमियान और यरूशलम में शुरू जवानी से मेरा चाल चलन कैसा रहा है, चूंकि वो शुरू से मुझे जानते हैं, अगर चाहें तो गवाह हो सकते हैं कि मैं फरीसी होकर अपने दीन के सबसे ज्यादा पाबंद मजहबी फिरके की तरह जिंदगी गुजारता था, और अब उस वादे की उम्मीद के सबब से मुझ पर मुकदमा हो रहा है जो खुदा ने हमारे बाप दादा से किया था, उसी वादे के पूरा होने की उम्मीद हमारे 12 के 12 कबीले दिल व जान से दिन रात इबादत किया करते हैं, इसी उम्मीद के सबब से ऐ बादशाह यहूदी मुझ पर नालिश करते हैं। जबकि खुदा मुर्दों को जलाता है तो ये बात तुम्हारे नजदीक क्यों गैर मुतकब्बर समझी जाती है। तो वो अपना सारा बयान करता है और क्या कहता है, वो यीशु मसीह के बारे में तालीम देना शुरू कर देता है बादशाह को, अपने सुनने वालों को, उन सबको वो समझाना शुरू कर देता और कहता है मैं भी ये समझता था कि यीशु नासरी के नाम की तरह तरह से मुखालफ करना मुझ पर फर्ज है। इससे पहले पालूस सौल बने वो क्या था जी, खुदावंद यीशु मसीह की मुखालफत करने वाला बंदा। इससे पहले 12 को चुना जाए कि वो उस मिशन को पूरा करें, वो पहले इस सच से वाकिफ नहीं थे। उन्होंने भी सुना होगा कि ये कौन है जो हमारी मजहबी रसूमात के मुखालफत में बोलता है, लेकिन जब उन्होंने यीशु को देखा, सुना, उस पर यकीन किया तो उनकी जिंदगी का मिशन चेंज हो गया, ठीक जैसे पालूस यहां पर कहता है। दसवीं आयत में कहता है, चुनाचे मैंने यरूशलेम में ऐसा ही किया और सरदार काहिनों की तरफ से इख्तियार पाकर बहुत से मुकदसों को कैद में डाला और जब वो कैद किए जाते तो मैं भी यही राय देता था और हर अबादत खाना में उन्हें सजा दिला दिला कर जबरदस्ती उनसे कुफर कहलवाता था, बल्कि उनकी मुखालफत में ऐसा दीवाना बनकर के गैर शहरों में भी जाकर उन्हें सताता था। ये पालूस का तरीका कार बन गया था जब वो साउल था। वो दीवाना था, वो कमला था, वो इतना जोशीला, इतना सरगर्म था कि मसीह के मानने वालों के साथ उसकी बनती नहीं थी। वो उनको कत्ल करवाता था, सताता था, यहां तक कि वो इतना इल्मदान था कि उसने सारी बातों को छोड़कर एक ही ठान ली थी अपने दिल में बात कि वो मसीह के पैरोकारों को जो अपने मिशन को पूरा करना चाहते हैं तबाहो बर्बाद करेगा। तो ये सारी वो अपनी सफाई पेश कर रहा है और पालूस रसूल अपने ईमान का बयान करते हुए से क्या कहता है, इसी हाल में सरदार काहिनों से इख्तियार और परवाने लेकर दमिश्क को जाता था तो ऐ बादशाह मैंने दोपहर के वक्त राह में ये देखा कि सूरज के नूर से ज्यादा एक नूर आसमान से मेरे और मेरे हम सफरों के इर्द गिर्द आ चमका। जब हम सब जमीन पर गिर पड़े तो मैंने अबरानी जबान में ये आवाज सुनी, ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है, पीने की आर पर लात मारना तेरे लिए मुश्किल है। पीने की आर पर लात मारने से मुराद ये है, आपने देखा होगा कि बैल जब जोतते हैं तो उनको चलाने के लिए कुछ डंडा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज भी किसी इलाके में वो डंडे के साथ सुआ लगा होता है, वो सुआ मारते हैं उस बैल के ताकि वो सीधा चले, दुरुस्त चले। यीशु मसीह से कह रहा है कि मैं जो खुदाए सलूस हूं, मैं जो नूरों का नूर हूं जिससे नूर जारी होता है, तू मेरी मुखालफत में खड़ा होगा तो दुख तुझे ही मिलेगा। जैसे वो कहावत है कि छुरी चाहे आम के ऊपर हो या नीचे हो, आम ही काटा जाता है, छुरी को कुछ नुकसान नहीं होता। तो पीने की आर पर मुराद वो है जैसे वो छोटी सी सुई जिससे कढ़ाई निकालते हैं, ये वो तेज नोकदार सुआ है जिसे खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि तू मेरी मुखालफत में क्या उठाएगा, दुख उठाएगा। तो वो अग्रिप्पा बादशाह के सामने अपने ईमान का इजहार करते हुए कहता है, मैंने कहा, 15वीं आयत, ऐ खुदावन तू कौन है, खुदावन ने फरमाया मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है, लेकिन उठ अपने पांव पर खड़ा हो क्योंकि मैं इसीलिए तुझ पर जाहिर हुआ कि तुझे उन चीजों का भी खादम और गवाह मुकर्रर करूं जिनकी गवाही के लिए तूने मुझे देखा है और उनका भी जिनकी गवाही के लिए मैं तुझ पर जाहिर हुआ हूं। और 17वीं आयत ने कहा, और मैं तुझे इस उम्मत और गैर कौम से बचाता रहूंगा जिनके पास तुझे इसलिए भेजता हूं कि तू उनकी आंखें खोल दे ताकि अंधेरे से रोशनी की तरफ और शैतान के इख्तियार से खुदा की तरफ रजू लाएं और मुझ पर ईमान लाने के बायस गुनाहों की माफी और मुकद्दसों में शरीक होकर मेराज पाएं। जाओ जाकर सब कौमों को शगिर्द बनाओ। पालूस रसूल इस बादशाह के सामने हाथ घड़ियां लगी हुई हैं खड़ा है और अपने ईमान का इजहार कर रहा है। हमें बाइबल मुकद्दस में भी बताया गया है कि जब लोग तुमको मेरे नाम के सबब से नाहक सताएंगे, कचहरियों में और कटहरों में और अदालतों में लेकर जाएंगे तो तुम नहीं बल्कि मेरा रूह तुम्हें बोलने वाला होगा। सो वो रूस में बोल रहा है, वो उसको बयान कर रहा है, कैसी शानदार बात है कि वो मौत का डर नहीं कर रहा, वो ये नहीं कह रहा कि मेरी जल्दी जल्दी जान छूट जाए, मैं यहां पर झूठे मुंह कुछ कह दूं और अपनी जान छुड़ा लूं। वो कहता है नहीं, वो अपने मिशन को पूरा कर रहा है जिसके लिए वो बुलाया गया है। और मिशन उसका क्या है जरा आगे देखते हैं। 19वीं आयत में लिखा है, इसलिए ऐ अग्रिप्पा बादशाह मैं उस आसमानी रोया का ना फरमान ना हुआ। आज हम इस बात पर गौर करें, 12 शगिर्द उस रोया पर, उस मिशन पर जो यीशु ने दिया उससे मुनकर नहीं हुए, नाफरमान नहीं हुए। तो इसीलिए आज दुनिया में क्या है जी, मसीहत है, शिगिर्दों ने जो 12 शिगिर्द थे इसराइल में जब मैं गया तो उसका जो पूरा हिस्सा अगर गिना जाए तो मीलों में 75/125 मील का ये सारा मुल्क है। कितना जी? 75/125 मील का ये सारा मुल्क है। और यीशु ने कहा कि तुम जाकर सिर्फ तुम्हारी खिदमत क्या है कि इसराइल के खोए हुए घराने की उन बेड़ों को क्या करना, मुनादी करना। और पालूस के लिए 75/125 का उसने एरिया नहीं कहा, उसने कहा कि तुझे मैंने गैर कौमों के पास भेजा है। वो तुर्की में गया, वो अराक में गया, वो अरान में गया, वो और बहुत से इलाकों में उसका पैगाम गया। उसने पूरी दुनिया में क्या की जी, अपनी जिंदगी को जो मकसद था उसे पूरा किया। और वो अपने मकसद में इतना मगन है कि उससे वो फिरता नहीं, वो किसी बात से घबराता नहीं। क्या लिखा है कि मैं आसमानी रोया का नाफरमान ना हुआ। हम सबको आसमानी रोया दी गई है। रोया क्या है? खुदावंद यीशु मसीह जमीन पर आया, वो मुआ दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया। जो कोई इस पर ईमान लाएगा वो उस आसमानी मेरास में शामिल होगा। उस आसमान पर बहुत बहुत बरकत है। हम नबियों को देखेंगे, रसूलों को देखेंगे, खुदा की हजूरी में होंगे। वहां पर मौत नहीं होगी, डर नहीं होगी। वहां पर आसमान पर हम मनादी नहीं करेंगे। आसमान पर किसी को बताने की जरूरत नहीं होगी कि यीशु मसीह निजात दहिंदा है। इस जमीन पर ही बताना होगा, क्योंकि यही हमारा मिशन है कि इस जमीन पर हम भेजे गए हैं अपने अपने मिशन को पूरा करें। और पालूस रसूल यहां पर बादशाह के सामने खड़ा हुआ क्या कहता है? कहता है बल्कि दमिश्कियों को, फिर यरूशलम के सारे मुल्क यहूदिया के, 20वीं आयत, बल्कि पहले दमिश्कियों को, फिर यरूशलम और सारे मुल्क यहूदिया के बशिंदों को और गैर कौमों को समझाता रहा कि तौबा करें और खुदा की तरफ रजू लाएं, तौबा के मुआफिक काम करें। उन्हीं बातों के सबब से यहूदियों ने मुझे हैकल में पकड़कर मारने की कोशिश की। और 22वीं आयत में वो क्या कहता, लेकिन खुदा की मदद से मैं आज तक कायम हूं और छोटे बड़ों के सामने गवाही देता हूं और इन बातों के सिवा कुछ नहीं कहता जिनकी पेशनगोई नबियों और मूसा ने की थी। वो खुदा के कलाम को नहीं भूलता। शिगिर्दों को क्या था इसराइल में, ये क्या कहता है, मैं दमिश्कियों के पास गया, यरूशलम में गया, सारे यहूदिया में गया, गैर कौमों को, छोटों बड़ों, बुजुर्गों, बच्चों, सबको वो क्या करता है, खुदा की बादशाही का पैगाम देता है कि यीशु मसीह पर ईमान लाओ तो तुम क्या होगे जी, हमेशा की जिंदगी के वारिस। तो आगे क्या लिखा है कि मसीह को दुख उठाना जरूर है और सबसे पहले वही मुर्दों में से जिंदा होकर इस उम्मत को और गैर कौमों को नूर का इश्तहार देता है। हम सबको एक इश्तहार दिया गया है। वो इश्तहार क्या है कि यीशु मसीह ने कहा दुनिया का नूर मैं हूं। हम सबको ये इश्तहार लगाने की, बताने की, इसकी मुनादी करने की जरूरत है कि यीशु मसीह के सिवा जिंदगी में कोई सुकून नहीं। ये बड़ा प्यारा पैगाम है, नूर का इश्तहार। अगला कोई क्रूसर रखा तो उसमें जो मजमून होगा नूर का इश्तहार, कि जाओ जाकर नूर का इश्तहार दो। क्या हम अपने नूर के इश्तहार से वाकिफ हैं? अगर हमारे पास खुदा का कलाम ना हो तो क्या हमारे दिल के अंदर वो नूर चमक रहा है? हम मुंह जुबानी नूर का इश्तहार दे सकते हैं? अगर नहीं तो आपको बताता हूं कैसे इश्तहार देना है। खुदा ने आपसे ऐसी मोहब्बत रखी कि आपके गुनाहों, आपकी तमाम गलतियों के बावजूद उसने यीशु मसीह को भेज दिया ताकि वो आपकी जगह आपके गुनाहों की खातर मरे। अगर आप उस पर ईमान लाएंगे तो तारीकी से निकलकर नूर में दाखिल हो जाएंगे। ये क्या है जी, नूर का इश्तहार कि यीशु मसीह पर ईमान लाओ। तो पालूस रसूल अपने मिशन से नहीं टला। वो क्या कहता है, जब हम 27वीं आयत को देखते हैं तो कहता है, ए अग्रिप्पा बादशाह, क्या तू नबियों का यकीन करता है? मैं जानता हूं कि तू यकीन करता है। अग्रिप्पा बादशाह ने पालूस से कहा, तू तो थोड़ी सी नसीहत करके मुझे मसीही कर लेना चाहता है। हम सब का हम अदालत में हो, बाजार में हो, काम में हो, गिरजाघर में हो, रक्षा चलाते हो या प्लम्बरी का काम करते हो या रंग सफेदी का काम करते हो, हमारी जिंदगी में से नूर का इश्तहार लोगों को नजर आना चाहिए और वो इस बात के लिए मुतमिन हो जाए कि ये बंदा मुझे मसीह का पैरोकार बनाना चाहता है। पालूस रसूल दरअसल यही कर रहा था क्योंकि वो अपने आसमानी मिशन से गाफल ना हुआ। पालूस रसूल क्या कहता है 29वीं आयत, पालूस ने कहा मैं तो खुदा से चाहता हूं कि थोड़ी नसीहत करके या बहुत सी। पालूस ने कहा, मैं तो खुदा से चाहता हूं कि थोड़ी नसीहत से या बहुत से सिर्फ तू ही नहीं बल्कि आज जितने लोग मेरी सुनते हैं मेरी बानद बन जाएं सवाए इन जंजीरों के। ये उसका मिशन है। अदालत में खड़ा है, उसको मुजरम करार दिया जा रहा है, ये नाम लेकर गवाही ना दो और वो हाथ कड़ियों में खड़ा कह रहा है कि मेरी ये ख्वाहिश नहीं कि ये तू ही नहीं बल्कि जितने मेरी आवाज सुन रहे हैं वो सब यीशु मसीह के नूर में शामिल हो जाएं, क्योंकि तारीकी से निकलने का एक ही रास्ता है और वो रास्ता क्या है, खुदावंदों का खुदा हाकमों का हाकम, जिससे हर एक रसूल हर एक नबी हर एक फरिश्ता हर एक इंसान बरकत और राहें निजात पाता है। वो कौन है? यीशु मसीह। हम भी ऐसा ही करें। शिगिर्दों को कहा गया इसराइल में, पालूस को कहा कि गैर कौमों में। अब हम इस मिशन को किस तरह पूरा कर रहे हैं? क्या हम शर्माते हैं? क्या हम घबराते हैं? क्या हमें दुनिया की चीजें रोकती हैं? जैसे हम यहां पर पढ़ते हैं, यीशु ने उनको कहा कि तुम्हें मुफ्त मिला है मुफ्त देना, निजात तुम्हें तोहफे में मिली है निजात का पैगाम मुफ्त देना। बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम, हम उस पर कीमत नहीं लगा सकते। तुम्हें मुफ्त मिला है, इसका फहम इसका अदराक, इसे मुफ्त देना। और कहा कि अपने साथ कुछ ना लेना, मुझ पर भरोसा करना। तो आज आसमानी रोया की तरफ आप सबकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि हम अपनी आसमानी रोया के नाफरमान तो नहीं हो रहे। जो आग हमारे दिल में जल रही थी जब हमने यीशु को कबूल किया, वो ठंडी तो नहीं पड़ गई? उस आग पर जो रूहानी जोश, जो वलवला, जो तजस्स, जो हमारे दिल में इश्तियाक और अरमान और रोया थे, वो ठंडे तो नहीं पड़ गए? दुनिया की फिक्रों में या फिर किसी और की बातों ने या फिर हमारी अपनी सुस्ती लापरवाही ने या इस दुनिया के नशे ने हमको इतना मगन कर दिया कि हम अपनी आसमानी रोया से गाफल तो नहीं हो गए? अगर हम गाफल होंगे तो हम अपना नुकसान करेंगे। अगर हम अपनी रोया अपने उस मिशन को पूरा करेंगे तो जिंदगियां बदलेगी। अब सवाल यह है कि खुदावंद खुदा मुझे इस्तेमाल कर। अगर कोई बहन किसी और जगह नहीं जा सकती, वो अपने पड़ोसी के घर में अपना मिशन पूरा कर सकती है, वो अपने घर में मिशन पूरा कर सकती है, अपने बच्चों को, अपनी बहू को, अपने भतीजों को, भतीजियों को, भांजियों को, भांजियों को, रिश्तेदारों को, किसी ना किसी को बताकर कह सकती है कि मेरा मिशन ये है कि मैं अगर बाहर नहीं जा सकती, मैं अपने घर में क्या करूंगी? खुदावंद की खिदमत करूंगी। तो शुरुआत इससे कर सकते हैं। कौन कौन बाइबल मुकद्दस पढ़ सकता है? हालेलुया, काफी लोग पढ़ सकते हैं। क्या आप घर में बाइबल पढ़ते हैं? क्या उनके साथ पढ़ते हैं जो नहीं पढ़ सकते? इस मिशन को शुरू करें। अगर दुआ नहीं करते तो घर में दुआ करना शुरू करें, बच्चों के साथ हाथ पकड़कर दुआ करें, अगर कोई मुश्किल है तो उस मुश्किल को सामने रखे कि खुदावन खुदा इस मुश्किल के लिए क्या करे जी, अपना आसमान खोले, अपने नाम को जलाल दे। तो पालूस रसूल अग्रिप्पा बादशाह के सामने खड़ा हुआ कहता है कि मेरी ख्वाहिश ये है कि तू ही नहीं बल्कि जितने यहां पर सुनने वाले हैं वो सुनकर क्या करें जी, मसीह की खुशखबरी को कबूल कर लें ताकि वो सब मसीही हो जाएं सवाए इन जंजीरों के। तो खुदा ने पहाड़ों के लिए, जंजीरों के लिए, बगीचों के लिए, जानवरों के लिए, परिंदों के लिए, चिरिंदों के लिए अपना बेटा नहीं भेजा, वो उससे वाकिफ है। उसने दुनिया में अपना बेटा भेजा है दुनिया के लोगों के लिए। और हमारा मिशन क्या है, जैसे पुलिस की ट्रेनिंग होती है, आर्मी की ट्रेनिंग होती है, आपकी रूहानी ट्रेनिंग, रूहानी तरक्की, रूहानी जो बूथ कैंप कहते हैं, बूथ कैंप उसे कहते हैं, वो मरकज यहां पर सिखाया जाता है, तैयार किया जाता है कि इंसान अपने मकसद को जाने। पुलिस को सिखाया जाता है कि किस तरह दफा करना है, आपको यहां पर सिखाया जा रहा है कि आपका मिशन क्या है। हमारा मिशन क्या है जी, यीशु मसीह की मनादी करना। क्या करना जी, यीशु मसीह की
मनादी।
हम कौन है, मिशनरी। हम कौन है जी, मिशनरी का काम है अपने मिशन को पूरा करना। और हमारा मिशन क्या है, जाकर सब कौमों को, पड़ोसियों को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को, दुखियों को, बीमारों को, बदरू गिरफ्ता को, जो रूहानी तौर पर मुर्दा है, उन सब के सामने ये पैगाम दें कि यीशु पर ईमान लाओ, वो तुम्हें निजात दे सकता है। अगर हम नहीं जाएंगे तो हम अपना मिशन पूरा नहीं करेंगे, अगर हम जाएंगे तो अपना मिशन पूरा करेंगे। और जब अपना मिशन पूरा करेंगे तो किसके नाम को जलाल मिलेगा, यीशु मसीह के नाम को। सो आज हमें कौन सी चीज रोक रही है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये कलीसिया जो आप हैं, खुदा के लोग, छोटे बड़े सब, यहां से तैयार होकर दूसरों को रूहानी जंग के लिए और मिशन के लिए तैयार करें, ताकि यीशु मसीह का नाम इज्जत और जलाल पाए। और हम कहीं भी खड़े हों तो हम कहें कि हमारी यही ख्वाहिश है कि हर एक चीज क्या हो जाए, यीशु मसीह की ताबिया हो जाए। सो आए हम सब खुदावंद अपने खुदा के जुड़ चुके, और अगर हम अपनी आसमानी रोया के नाफरमान हैं तो उसे खुदावंद के हजूर अपने दिल को खाली करें और कहें कि खुदावंद मैं मुमकिन है कि ना फरमान हो गई थी, ना फरमान हो गया था, दुनिया दुनिया की बातों में, फिक्रों में पड़ गई थी, मुझे, मैं तेरे पास आती हूँ, आता हूँ, मुझे बहाल कर। हम ये दुआ खुदावंद यीशु मसीह से कर सकते हैं।